نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الله تبارك تعالى في المقام الآخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا آج جس موضوع پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے وہ ہے توکل توکل کیا ہوتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے اور ہم یہ موضوع کیوں سنیں اس کے بارے میں ہمیں یہ سب سننے کو کیوں مائل کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمیں مختلف قسم کے حالات جو اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں اس میں ایک چیز جو بہت زیادہ کثرت سے دیکھی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اکثر لوگ گھبرائے ہوئے ہیں پریشان ہیں ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ کل کیا ہو جائے گا جنگ لگنے والی ہے اور کاروبار نہیں چل رہے گھر میں پریشانی ہے اور ایک کیوس دکھتا ہے حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ فل یتوکل علی اللہ اللہ پہ توکل کرو بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ جو ہونا چاہیے اللہ نے کرنا ہے ہمارے کرنے سے تو کچھ ہونا نہیں ہے تو مختلف طریقے سے توکل کے نام پر کچھ لوگ سارا کچھ اللہ پہ ڈالتے ہیں خود کچھ نہیں کرتے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کوششیں بھی کر رہے ہیں ارادے بھی ہیں لیکن اپنے نتائج کو اپنے ہاتھوں میں رکھنا یا محسوس کرنا اس کو کنسیڈر کرتے ہیں حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ میرے آپ کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ہے وہ کیا ہے کہ تم کوشش کرو اس کے بعد نتائج اللہ پہ چھوڑ دو خاص طور پہ آج جس موضوع کو میں نے اپنے لیے چوز کیا ہے وہ کیا ہے کہ دین کے معاملے میں ہم اللہ پر توکل کیسے کریں بعض لوگ جب بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو دنیا میں نعمتیں دی ہوتی ہیں ان کو پاتے ہیں استعمال کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے آج کے دور میں یہ نہیں ہو سکتا پابندیاں ہیں حالات خراب ہیں گھر والے نہیں یہ نہیں تو تھوڑا سا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل کا جو ایک عملی رخ تھا آپ کے سامنے وہ رکھوں گی کہ آپ نے کس طرح کے حالات میں اللہ کے دین کو پھیلایا توکل کس کو کہتے ہیں میں دو تین جملوں میں آپ کو توکل کی بڑی آسان اور سمجھ میں آنے والی تعریف بتاؤں گی اس کی تعریفیں بہت بڑے مشکل سخت الفاظ میں بھی آپ کو ملیں گی لیکن جو توکل کی بات ہے وہ کیا ہے کہ اپنی ہر ممکن کوشش کرنا کس بات کی دو چیزوں کی فائدہ حاصل کرنے کی اور دوسری طرف نقصان سے بچنے کی توکل کیا ہے کسی فائدے کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا اور دوسری طرف نقصان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنا لیکن نتائج اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں جب ہم اسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں تو نتائج ہم اسباب پہ رکھتے ہیں یہ شرک ہو جاتا ہے میں آپ کو اب کرنٹ سچویشن سے سمجھانا چاہوں گی دیکھیے معاشر آپ لوگوں نے مائک کا انتظام کیا ہوا ہے نا مجھے یقین ہے کہ یہ باہر سے آیا ہے مائک یہ یہاں کا نہیں ہے اچھا مائک ہے کوئی بری بات نہیں ہے ہو سکتا ہے آج ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ بہت اچھا مائک ہے لیکن اس وقت ہمیں سیٹ نہیں کرنا آ رہا مائک خراب نہیں ہے ہمیں سیٹ نہیں کرنا آ رہا بات سمجھ رہے ہیں اب کیا کریں हमने कोशिश की, माइक लेकर आए, मर्दों ने आके लगा भी दिया, हमें समझा भी दिया, लेकिन अब आखिरी वक्त में इसमें कोई कमी बेशी हुई है तो ये अल्लाह का हुक्म समझ के मान जाए, नहीं है तो ना सही। घबराए नहीं, परेशान नहीं हो। अगर ज़िंदगी में ये असूल समझ आ जाए, यकीन करें कि हमारे पांव ज़मीन पे लगने लगे, हम परेशान ना हों। मसलन आप देखिए कि कोई मर्द है, वो कारोबार करता है, वो 10 लाख रुपया लगाकर एक छोटी सी दुकान खोलता है। उसने हर मुमकिन कोशिश की कारोबार खोलने की, हो सकता है बीवी का जेवर बेचा, घर बेचा, कुछ भी किया। अब आप देखिए कि कोई पैसा लगाता है, सब कुछ करता है, और वो कहता है कि चूंकि मैंने पैसा लगा लिया है, मुझे दुकान बड़ी अच्छी जगह पे मिल गई है, जो सौदा मेरे पास है वो किसी और के पास नहीं है, ये सब कुछ करें लेकिन इस पे भरोसा नहीं करें। भरोसा किस पे करना है? कि ये सब मेरा हिस्सा था, मैंने डाल दिया, अब इसके बाद जो मेरा मालिक चाहेगा वही होगा, ये है तवक्कुल। बात समझ गए? तीसरी मिसाल ले लें, माँ बाप हैं, बच्ची जवान हो रही है, शादी का वक्त है, हर मुमकिन कोशिश कर ले अच्छा रिश्ता ढूंढने की, अच्छा दीनदार लड़का मिल जाए, हाफिज है तो बड़ी अच्छी बात है, आलिम है तो बहुत अच्छी बात, दुनिया की दौलत भी है, शरीफ भी है, हर चीज़ सोच लीजिए, और साथ साथ अपनी बेटी की अच्छी से अच्छी तरबियत करें। कर ली, पूरी कोशिश करें कि बेटी निभा करने वाली हो और मर्द जो है वो निभा करवाने वाला हो। आप सारी कोशिश करके अब क्या कहें कि जो कोशिश कर सके थे करें, अब अल्लाह चाहेगा तो ये घर बसेगा। मैं एक माँ का जुमला आज तक नहीं भूली, हालांकि शायद मैंने इसको 15-20 साल पहले सुना था। वो कहती थी अपनी एक बेटी के बारे में कि मुझे इसकी तो ज़रा भी फिक्र नहीं है, क्योंकि ये बड़ी सुघड़ है, इसको घर चलाना आता है, ये समझदार है, काम करती है, ये है वो है, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। हो सकता है दूसरी बेटी को वो ताना देती हो कि तुम पता नहीं अपने घर जाकर क्या करोगी, और तीसरी को कुछ और कहती हो, लेकिन वो जिस बड़ी बेटी के बारे में माँ का ख्याल था ना कि जिस घर में जाएगी लोग उसके गुण गाएंगे, सबसे ज्यादा जिंदगी में उसी को मुश्किल आई। वो जुमला कड़वा था कि इसका मुझे कोई फिक्र नहीं, ये बहुत अच्छा रहेगी। तो असबाब इस्तेमाल कीजिए, अपनी बच्चियों के लिए अच्छे घर ढूंढिए, अपने बेटों के लिए अच्छी बहुएं ढूंढें, लेकिन फिर कहें कि मालिक जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया, अब तू जान और मैं जान। मैं इसकी आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिसालें देना चाहूँगी। आप देखिए कि अगर हम सीरत को अपनी ज़िंदगी में ले आएँ तो हमारी ज़िंदगी के सारे मसाइल ख़त्म हो जाए, यकीन करें। क्योंकि मैं थोड़ा सा रोक के यहाँ ये भी बता दूँ कि हम मुसलमानों के ख़ास तौर पे, और चलिए हम पाकिस्तान में इस वक्त बैठ के ये बात सुन सुना रहे हैं, तो पाकिस्तान में रहने वालों के आम तौर पर मसाइल का एक बहुत बड़ा हल क्या है कि हम अपनी मौजूदा हालत पे, जो अल्लाह ने हमें रिसोर्सेज दिए हैं, जो उसने हमारे पास चीज़ें रखी हैं, उस पर मुतमईन हो जाएं। ये जो बात करते हैं ना, हम हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, इस मुल्क में तो कुछ रहा ही नहीं, सब लूट के खा गए, सब तबाह कर गए, और ये भी नहीं वो भी नहीं, महंगाई भी है, बिजली भी नहीं, पानी भी नहीं, सौ सौ किस्म के कीड़े निकालते हैं लोग अपने ही मुल्क में, ये तवक्कुल के मुनाफी है। यकीन रखिए इस बात का कि जिन हालात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन का काम शुरू किया, और इतनी थोड़ी मुद्दत में आपने एक बहुत बड़ी चेंज पैदा करके दिखाई लोगों को, आज हमारे पास तो उससे हजारहा गुना ज्यादा रिसोर्सेज मौजूद हैं। अगर हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जब उठे, सच बताइए क्या हालात आपके मुवाफिक थे? आपके मुवाफिक नहीं थे हालात। पहली आवाज उठती है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, अपने भी दुश्मन बन गए, अपने भी बेगाने बन गए, जो कल तक आपको सादिक और अमीन कहते थे, आज वो आपके नाम पर कुछ और बन गए, कभी काहिन और मजनू और दीवाना का। आप अपने ऊपर लें, देखिए आप जो बात अपने ऊपर लेंगे ना तब आपको समझ आएगी, वरना बात समझ नहीं आएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के शहर में जब आवाज़ हक उठाई, अपने भी दुश्मन, बेगाने भी दुश्मन, कोई साथ ही नहीं है, तन तनहा अकेले चले थे लोग, मिलते गए, काफिला बनता गया। उन हालात में नबी सल्लम का दावत का पैगाम, क्योंकि जो मक्का के 13 साल है ना, ये दावत के, अभी मैं मदीना के दौर में आपको लाती हूँ, तो आपको रोज़े रोशन की तरह ये बात वाजे हो जाएगी कि अल्लाह पर तवक्कुल कितनी बड़ी ताकत है, अल्लाह पर तवक्कुल इंसान को कहाँ उठा के ले जाता है। यतीम बच्चा, दादा चचा, माँ, कितने हाथों से पलता पलाता बड़ा हुआ, किरदार बड़ा खूबसूरत था, जज्बे सच्चे थे, गारे हिरा में जाकर अल्लाह से इंस्ट्रक्शंस लेते थे, क्या करूं, आपने मेरे लिए कोई काम रखा हुआ है, आप किस चीज़ से खुश होंगे, यानी अपनी ज़ुबान में बात कर रही हूँ। इबादत में तो यही तो होता है, हमारी इबादत तो और होती है ना, अल्लाह सुबहाना तआला के नाम पे जो बंदा इबादत करता है असल में उसमें अल्लाह तआला से काम मांगता है। ये मैंने एक बड़ा साइड का जुमला बोला है, बात बड़ी पते की है, अगर आप बाद में इस पर गौर करें फिर बोलती हूँ। इबादत की हकीकत क्या है, बंदा अल्लाह से काम मांगे, ए अल्लाह मुझे काम दे, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह मैं तेरे रास्ते में कुछ करना चाहती हूँ। एक नमाज के बाद ये फीलिंग आएगी तो फिर दूसरी नमाज के बाद भी आ जाएगी। हर वक्त एक बंदा अपने रब के साथ ताल्लुक जोड़े बैठा होता है कि अल्लाह मुझसे कुछ काम ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल की जब हुई, हालांकि देखिए कि इस्लाम के तरीके की नमाज रोज़ा हज उस वक़्त नहीं था। आप सूरत अल अराफ खोल के देखिए, खाना काबा में जाकर वो उल्टी सीधी हरकतें करते थे इबादत के नाम पे, तालियां बजाते, सीटियां बजाते, कहते ये हमारी नमाज है, काबा में तवाफ करते और उसमें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के साथ कुछ और भी कहने लगते, यानी बिल्कुल पूरा मुआशरा डिस्टर्ब है, प्लूटेड है। ऐसे में एक शख्स गारे हिरा में क्यों गया, आज एक बात बोलूंगी, सब गौर से सुनिएगा और बाद में इस पर गौर कीजिएगा। और वो बात क्या थी, खाना काबा मौजूद है मक्का में, था ना, अब इब्राहिम इस्माइल के हाथों का बना हुआ काबा मौजूद था ना, और उस माशरे में भी खाना काबा की ऐसे ही इज्जत थी जैसे आ जाए, लेकिन नबी सल्लम वहां से उठकर गारे हिरा में जाकर के इबादत करते थे। सोचा कभी आपने इसके बारे में, हम तो यहां से मक्का जाना चाहते हैं ना, हम कहते हैं वहां चक्कर लगाएं, वहां फिरें, क्या फर्क है यहां नमाज पढ़ने में और खाना काबा में जाकर पढ़ने में, मक्का में जाकर पढ़ने में, कैफियत क्यों बदलती है कि अल्लाह का घर वहां है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के घर के अंदर भी कुछ किया ही होगी इबादत, लेकिन जो आपका हारे हिरा में जाकर तन्हाई में अल्लाह से बात करना था ना, असल वो चीज आज मिसिंग है। और वो क्या था, जिसको पहली दूसरी वही में अल्लाह ताला ने साबित कर दिया था कि या अय्युहल मुद्दसिर कुम फअंजिर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतअख्खिर व रुज्ज फहजुर। सूरह मुद्दसिर सबको आती है, ए चादर ओढ़कर लेटने वाले खड़े हो जाओ और अपने रब के नाम पे खड़े हो और उसके नाम पे लोगों को वॉर्न करो। ये था वो पैगाम जो अल्लाह के नबी को मिला था हिरा में, कि आपकी ज़रूरत है इस सोसाइटी को, मक्का काबा बुतों से भर चुका है, खाना काबा में बुत हैं, लोग मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, सब हैं, अब आप जाइए और इस सोसाइटी की तदखीर करें, बाकी करें। सच बताइए कि आज आपको मुझे इस काम की ज़रूरत नहीं है, सच बताइए, सारा घर गंदा हो तो आप साफ सुथरे कपड़े पहन के बैठ जाएं, बहुत हुआ तो आप अपना कमरा सही कर लें, तो क्या आपका कमरा ठीक रहेगा, नहीं रहेगा, बाहर वाले कमरे की मट्टी आपके कमरे में आएगी, गली की मट्टी आएगी, यानी आप साफ नहीं रहेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेकर उठे थे वो क्या था, कि आप इस मुआशरे के अंधेरे दूर करें। आप अपने ऊपर लें, मैं टैली करवा रही हूँ ताकि फिर हमें तवक्कुल का एक खूबसूरत एंगल समझ आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाह ताला मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मैं तो अकेला हूँ, मेरा तो कोई हाथ भी नहीं थामने वाला, मेरे पास तो कोई साइकिल रिक्शा स्कूटर भी नहीं है, किस पे बैठूं, किसको सुनाऊं, किससे कहूं, कह सकते थे ना। जूं ही आवाज आई, इकरा बिस्मि रब्बी कल्लज़ी खलक, खुद पहले पढ़िए अपने रब का नाम लेकर उठिए और फिर अल्लाह से जोड़े, दूसरी ही वही में फानजिर अशीरतकल अक्रबी, तड़प पैदा करना। आज के दौर में हम अगर ये दर्द नहीं रखते, जब मैं ये दर्द नहीं रखती कि मुझे दीन के लिए कुछ करना है, तो याद रखिए इस बात को, मैं आप अगला जुमला बहुत कड़वा है, अगर आज मेरे दिल में दीन के लिए कुछ करने का दर्द नहीं है ना, अल्लाह की कसम, अल्लाह इसके बदले में मुझे जाती जिंदगी के 10 दर्द दे देगा, 10 गम लग जाएंगे मुझे। इस बच्चे का गम, उस बच्चे का गम, उस भाई का गम, उस बहन का गम, माँ का गम, कहीं फलां का गम, मेरा सारा दिन गमों, दुखों, तकलीफ़ों में गुजरेगा। मैं भी रोऊंगी पर मैं अल्लाह के दीन के जवाल पे और उम्मत मुस्लिमा के हालात पे नहीं रोऊंगी। मैं रोऊंगी अब कभी अपने एक बच्चे पे, कभी एक भाई पे, कभी को मरा हुआ याद आ जाएगा तो कभी जो जिंदा उसके मरने का गम रुला देगा। अल्लाह के दीन के लिए कुछ करने का गम इतना मुबारक है, अल्लाह की कसम नहीं खाती, लेकिन फिर दिल का रखा लो कि आपको दुनिया के हर गम से बेनियाज कर देता है, हर बीमारी से बेनियाज कर देता है, हर दुख से बेनियाज करता है। और मैं बड़े दुख और दर्द के साथ ये बात कहूँगी, तकलीफ के साथ, सबकी बात नहीं करूँगी, बहुत बड़े बड़े मुसलहीन और सारा शहर, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया भरी हुई है, बट आज के मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम इस दर्द को भूले हुए हैं। आज ये जो हमारी ज़िंदगी में मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, एक साल बाद तकरीबन मेरा पाकिस्तान चक्कर लगता है, आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि आप रहते हैं, बट मैंने पिछले साल से इस साल में एक बिग चेंज देखा है। कभी फिर अगर कोई मौका हुआ तो आपको सुनाऊंगी क्या क्या चेंज देखे मैंने इस एक साल में। लेकिन जो चीज़ मेरी छोटी सी अकल में आती है वो ये है कि आज हमारे दिल में दीन के दर्द और गम से भरकर ज़ाती ज़िंदगी के दर्द और गम लगे हुए हैं। और इसका अपोजिट भी है, दीन की खुशियाँ, दीन की बहारें, दीन के लिए जीना, दीन कहती है ना तो उसमें अल्लाह के बंदे, अल्लाह का दीन, सब कुछ ले आइएगा। आज खुशियाँ अपनी जाती हैं, आज मेरा ये बच्चा खुश तो मैं खुश, आज मेरा शौहर खुश तो मैं खुश, आज मेरी बीवी मुझसे खुश तो मैं खुश, आज भाई बहनों को खुश कर लिया तो सब खुश, यानी खुशियाँ जो है वो भी हमारी जाती खुशियाँ लगी हैं। बहुत कम हमारे दिल में कभी आए, कभी बैठ के सोचें हम सब, कब आखिरी दफ़ा मैं गमगीन हुई, आज से लेके देख ले, हो सकता है अभी आने से घंटा पहले ही कोई गम लगा हो। पहला गम क्या लगा था और आखिरी क्या लगा है? किस चीज़ का गम है? दुनिया का, दुनिया दुनिया दुनिया। गुनाह नहीं है, देखिए जहाँ लफ्ज़ मैं दुनिया बोल रही हूँ ना, ये सिर्फ दीन के तकाबुल में बोल रही हूँ, उसमें सवाब और गुनाह की बात नहीं। वल्लाही बच्चों का गम लग सकता है, ये गुनाह नहीं है, बीवी का गम, बच्चों की परेशानियाँ आ सकती हैं, लेकिन ये गुनाह नहीं है। मैं सिर्फ आपको अल्लाह ताला की उस सुन्नत की तरफ ले जाना चाहती हूँ, और वो क्या है कि जब हम अल्लाह के दीन से ज़्यादा अपनी ज़ाती चीज़ों को ले पढ़ते हैं ना, उसकी सजा ये मिलती है। सूरह तौबा की एक आयत का सिर्फ एक हवाला दे देती हूँ, अल्लाह ताला क्या कहते हैं, कुल इन कान आबाउकुम वअबनाउकुम वइख्वानुकुम, 9 रिश्तों की बात है वहाँ, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे भाई, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे घर, तुम्हारी तिजारतें, नाम लेके कहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि, अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और उसके रास्ते में जिहाद यानी मेहनत से ज़्यादा प्यारे हैं तो फतरब्बसु, फिर इंतज़ार करो, किस बात का, हत्ता याती अल्लाह बी अमरिही, यहाँ तक कि अल्लाह अपने दीन का फैसला ले आए। मुझे ऐसे लगता है कि इस वक्त हमारे ऊपर अल्लाह का वो फैसला आया हुआ है। नफसा नफसी है, भगदड़ है, परेशानी है, बेबरकती है, महंगाई है, सारी मुश्किलें हम पे क्यों? रहमतें हैं तेरी अखियार के काशानों पे, बर्क गिरती है बेचारे मुसलमानों पे क्यों? इसलिए कि अल्लाह पे तवक्कुल कम, असबाब पे चीज़ नजरें ज़्यादा हैं। हम किसी मौजज़े के मुंतज़िर हैं, एक दम कोई मौजज़ा हो और पूरी दुनिया में अल्लाह का दीन गालिब हो जाए, कोई एक मर्द मोमिन आए और पूरी दुनिया में अल्लाह का दीन फैला जाए, ये मौजज़े नहीं होते। याद रखिए कि जब कौमें बाशऊर होती हैं ना, दो तरह के हालात अल्लाह ताला की सुन्नत में आते हैं, या तो लोगों में तड़प ही बड़ी पैदा हो जाए, बस हम सब पाकिस्तान के लोग मुखलिस हो जाएं, सच्चे हो जाएं, अपने घर बेच देंगे, अल्लाह के दीन को आबाद करेंगे, अपने बच्चों को रुला लेंगे, अल्लाह के दीन को नहीं रुलाएंगे, मिसाल दे रही हूँ। जब सारे मुखलिस हो जाते हैं ना, है कुछ नहीं पर अल्लाह करना चाहते हैं, अल्लाह तोहफे के तौर पर एक अच्छा रहनुमा, एक लीडर मौजज़े के तौर पे भेज देता है उस मुल्क में, वो रातों रात कुछ कवानीन बनाता है, कुछ लोगों की तरबियत तज़किया का अहतमाम करता है, वहाँ काम होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने यह काम लिया था, गारे हिरा में जाकर आपके मनाजात और आपके अल्लाह ताला के साथ तड़प और जो बातें थी ना, वो सारी सामने आई और अल्लाह ने कहा कि जाइए अब आप मक्का को साफ करें। कहाँ गए थे आपको पता है? गारे हिरा से पहली वही अखज़ करने के बाद सबसे पहले किधर गए थे? हजरत खदीजा। कहाँ जाना था? अपने घर, अपनी बीवी। मैं अपनी बात पे लूँ तो अगर हम औरतें तो हमें अपने शौहर, अपने बच्चों को साथ में लाना पड़ेगा। ये जो अकेली जंग होती है ना, ये चूमुखी जंग होती है, चारों तरफ से रिएक्शन होता है। हम होते हैं, हम कहते हैं चले किसी इमाम साहब के पास जाता हूँ, कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला, इस इशारे से क्या ही मुझे इशारा हुआ है। चले अल्लाह के नबी को तो वही आई थी ना। आज हम में से किसी को ख्वाब में कोई ऐसी कैफियत मिल जाती है, कौम फानजर या कोई ऐसी बात, तो हमने सबसे पहले तो जाके ख्वाबों की ताबीर बताने वाले को जाके सुनाना था, और दिस एंड दैट। नहीं, अल्लाह सुबहाना तआला ने अपने नबी को बता दिया कि आप खड़े हो जाएं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे करूं, कहां जाऊं, कुछ भी तो नहीं है पास, तजुर्बा भी तो नहीं है, प्रैक्टिस भी नहीं है। नहीं, कौम फानजर। बंदा अकेला चलता है। याद रखिए, इखलास की दौलत लोगों की दौलत से बहुत कीमती होती है, तकवा की दौलत दूसरी चीज़। किसी काम को करने के लिए सबसे पहले इखलास, क्योंकि मदद अल्लाह की आती ही इन्हीं चीज़ों के साथ है। इखलास होगा, अल्लाह गैब से मदद करेगा। तकवा होगा, गैब से, आज फरिश्ते तो नहीं उतरते दिखते लेकिन अल्लाह भेज सकता है। इखलास, तकवा, तड़प, कुछ करना है। ए अल्लाह, मैंने इस दुनिया के अंधेरों को दूर करना है। देखिए, आप सब माशाल्लाह उस मुल्क में बैठे हैं जहां हम जब पढ़ते थे उस वक़्त तो ख़ास तौर पे था। हमारी असेंबली में एक दुआ पढ़ी जाती थी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, याद है आप सबको? हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, ये क्या है? पढ़ते थे ना। वल्लाही कभी किसी ने इस शेर का मतलब ही नहीं सुझाया। अगर आज ये दुआ दोबारा शुरू हो जाए हमारे छोटे छोटे बच्चों की स्कूलों की असम्बलीज में, सिर्फ वहाँ 2-4 मिनट की बात कोई कर दे कि ये हर जगह मेरे चमकने से उजाला होता कैसे है, तो आज उम्मत को हर साल हजारों की तादाद में रोशनियाँ बांटने वाले मिलें। फहम और शऊर के साथ बच्चों की तालीम का एहतमाम करें। कितनी तेज़ी से हमारे हालात बिगड़ते जा रहे हैं ये तो एक अलग इशू है, लेकिन तवक्कुल किस चीज़ पे? अल्लाह के काम के अंदर तवक्कुल। क्योंकि जब तक मेरा आपका मौजूदा हालात पे अल्लाह के हुक्म से भरपूर तरीके से हम अपने मौजूदा रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करेंगे, हम ज़्यादा रिसोर्सेज को भी यूज़ नहीं करेंगे। एक जगह कहीं बात हुई तो मैंने ऐसे ही एक्टिविटी हो रही थी, कोई वर्कशॉप टाइप ही थी, साथी जो थे उनसे पूछा, बिलफर्ज मेरा हालांकि इन चीज़ों पे कोई एतकाद नहीं ना हमारी नज़र है, लेकिन मिसाल है कि आप में से किसी को 1 करोड़ रुपया मिल जाए, अब कोई कहता है लॉटरी में मिल जाए, कुछ छोड़ दीजिए, बस आपको अगले महीने 1 करोड़ रुपया मिल जाए अचानक, तो आप उसका क्या करेंगे? तो जो साथी बैठी थी उन्होंने फिर सब ने मुख्तलिफ तरह से बताया। एक ने कहा मैं तो सारा ही अल्लाह के रास्ते में दे दूंगी, दूसरी ने कहा मैं आधा दे दूंगी, तीसरी ने कहा मैं उससे ये कर्जा दूर करूंगी, यानी हर एक ही एक डिफरेंट आंसरिंग थी। मैंने उसके जवाब में उनको कहा कि सिस्टर अब वापस आइए, कोई नहीं है 1 करोड़, आज क्या है, अगर जो आज मौजूद है ना, आज अगर आपने सारा नहीं दिया ना तो आप 1 करोड़ भी सारा नहीं देंगी। अभी थोड़े में नहीं दे पा रहे, ज़्यादा में तो आपको और भी इस किस्म की तकलीफ़ें नज़र आनी है अपनी ज़ात में, और अगर आज के माल में से आधा नहीं दिया ना तो कल 1 करोड़ का आधा आप नहीं देंगी। बात समझ गए? आज के हालात को सामने रख कर अल्लाह का काम शुरू कर दें। इखलास, तकवा, तड़प, लगन और काम करने का तरीका। इसके बाद यकीन करें आपको ना इधर देखने की ज़रूरत है ना उधर देखने की ज़रूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दिया गया, आप चल पड़े। सबसे पहला इस्लाम का दाई कौन बना? आप खुद। सबसे पहले पैगाम किसको पहुंचा? खदीजा को। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को। देखिए, अबू बकर सिद्दीक एक शख्स थे, मक्का के सरदार, दौलतमंद भी थे, फयाज भी थे और सब कुछ भी थे, ये असल में अल्लाह के नबी को तोहफे में मिले थे। किस बात का तोहफा? तड़पती कुछ कर लो, बहुत सारे नहीं भी मिलेंगे ना आपको, वल्लाह ही एक मिल जाएगा और वो लाखों पे भारी होगा। मैंने लोगों को देखा है चंदा मांगते हैं ना, डोनेशन मांगते हैं, और अमेरिका की जुबान में जब मैं वहां थी तो वहां फंड रेजिंग डिनर करते हैं, यानी आपने देखा होगा बास्केट घूमती है ना मस्जिद में। मैं ये नहीं कह रही करें ना करें, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन मैंने देखा है, जो मैं वो फील करती हूँ, वो सारे नमाजियों के सामने बास्केट जाती है, जुम्मा नहीं पढ़ाया अभी पहले बास्केट फिरती है, कोई अगर डोनेशन जमा हो रहे हैं, फंड रेजिंग है, खाना नहीं खुलना पहले जाता है। बिलीव मी, एंड पे जाके वहाँ उस डोनेशन को आप खोल के देख लें, हो सकता है अगर वहाँ 200 लोग बैठे थे तो 20,000 रुपया जमा हो जाए, ऐसे ही है ना, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी। और अगर आप इस तर्ज अमल को बदल लेते तो मैं देखती हूँ एक बंदा उठता है वो 2 लाख का चेक लिख के दे जाता है, जी हमारा हिस्सा कहीं डाले, अल्लाह की कसम। समझ आइए, मांगने वालों को हमेशा आना ही मिलता है, रेजगारी मिलती है, चंदा ही मिलता है, और काम करने वालों को फिर लाखों मिलते हैं। फैज आजम तवक्कल अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को घुलाया, तड़प तलब के साथ काम शुरू किया, अल्लाह ने बरकत दे दी और वो हो गया। कितने साल रहे मक्का में? 13 साल रहे। 13 साल में कितने लोग दीन पे आए आपको पता है? जब हिजरत हुई तो टोटल कितने मुसलमान थे जो मक्का से हिजरत करके मदीना आए? 100 कुछ। 100 कुछ लोग 13 साल की कोशिशों का समरा थे, फल थे। अगर आप 13 को तकसीम कर दीजिए तो 8 लोग तकरीबन 1 साल में दीन में आए। आज के ऊपर लीजिए, मैं हर दर्स में डेट भी याद करवा देती हूँ, आज क्या डेट है? 13 फरवरी, ठीक है, 13 फरवरी 2017। आज अगर मैं यहाँ आपकी इस मस्जिद में आके बैठूँ, मैं कहती हूँ आओ मिलके कुछ करते हैं, आओ अल्लाह के बंदों के अंधेरे दूर करते हैं, आओ इस जहालत को दूर करते हैं, वल्लाही अगर मेरे आज 13 फरवरी 2017 से शुरू करने के बाद पूरे 1 साल बाद 13 फरवरी 2018 को अगर 8 लोग मेरे साथ जुड़ गए ना, आप लोगों में से दीन को फैलाने के लिए, या 8 लोगों की नमाजें ठीक हो गई, 8 लोगों का तज़किया और तरबियत हो गई, तो ये सुन्नत के मुताबिक है। अल्लाह 8 को 28 कर दे, अल्लाह 800 कर दे। आज के दौर में रिसोर्सेज बढ़े हैं, क्या मुश्किल है, एक आवाज़ निकलती है चंद मिनट में हजारों लोग सुनने लग जाते हैं, ये क्या बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि वो अल्लाह का बंदा था जो गली गली घूमा था। कभी आप दुआए ताइफ तो सुन के देखें। आज अगर आपको मौका मिले उम्रे पे जाने का, अल्लाह लेकर जाए, और अगर इजाज़त हो तो आप ताइफ जाइए। पैदल गए थे, शायद 70-80 किलोमीटर बनता, साथ अपना ग़ुलाम और ख़ुद, जूतियाँ चिपक गई। मैं जब गई तो मैं रास्ते में यही सोचती रह गई, अल्लाह के नबी आए कैसे होंगे, हम तो इतनी अच्छी गाड़ी में जा रहे हैं फिर भी थकन हो रही है, वो कैसे आए होंगे पैदल, शायद सवारी भी नहीं थी पास, तो आज की इतनी खूबसूरत सड़कें तो नहीं थी उस वक्त। ये काम करने का शौक था। थी आपके पास गाड़ी तारीफ चलते हुए? था आपके पास वहाँ कोई खूबसूरत प्रोटोकॉल? थे वहाँ लोग फूलों की बास्केटें पकड़े हुए कि आइए हमारे दीन, हमें दीन सिखा जाए? पत्थर पड़े थे, लेकिन ये तवक्कुल है। तवक्कुल ये है, अल्लाह की कसम कि मैंने अपनी तड़प के साथ कुछ करना है, आगे मेरे हाथों से कुछ हुआ या ना हुआ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, खुशी तो होती है, लेकिन हमारा मुद्दा और हमारा मकसद लोग नहीं है। एक और इससे भी संगीन मिसाल ले लें, हजरत नूह की। 950 साल में 70 लोग लगा लें एवरेज, हर 12-13 साल में एक बंदा बनता है, ये तो हालात उससे भी क्रूशियल है। तो क्या हजरत नूह का अजर ज़ाया हो गया? क्या क़यामत के दिन अल्लाह ताला हजरत नूह को शर्मिंदा करेगा कि नूह आपका तो अपना बेटा नहीं बचा, आपकी तो बीवी नहीं ईमान लाई, और आप तो ये और आप तो वो, और देखिए ये कोई काम करने का तरीका, आपको तो काम ही नहीं करना आता। ये जो हमें इब्तदा में गम लग जाता है ना, लोग नहीं आते और हालात नहीं ठीक, ये तवक्कुल के मुनाफी है। हमेशा कम पे राजी रहे इस बात पे कि मेरा नाम लग जाए, मेरा नाम उस काफिले में अल्लाह लिख दे। आज हम मुसलमानों को, सच बताओ, माइंड ना करें पाकिस्तान वालों को, ये तड़प और जज्बा देने की ज़रूरत है। अगर आप किसी को तोहफा देना चाहते हैं ना, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं आज अपने मुल्क में, ये दीजिए कि मेरी बहन बैठो बात करो। सब कुछ होते हुए आपका दिल उदास क्यों है? सारी नेमतों में आप हैं, फिर शिकवे किस बात के? 100 नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000 नहीं, अब तो करोड़ भी बच्चा लगता है। इस ट्रिप में मैंने पहली दफा अरबों और खरबों की बातें सुनी है, पिछले ट्रिप तक सिर्फ लोग करोड़ों की बात करते थे। इतने के बावजूद आप गमजदा क्यों हैं? आओ जरा मिल बैठे, ये हमारे मुल्क का हालात। चोरियां क्यों हैं? कल रात हम एक शादी में थे, क्लोज सर्कट शादी थी। बहुत रिक्वेस्ट के बाद उधर फीमेल जो वेट्रेस है उनका इंतजाम नहीं हो पाया। जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलते हैं, हमारे अपने अजीज भी थे, हम चले गए उनके ऑफिस में, अच्छी अच्छी बातें की, बहुत ही खूबसूरत इंतज़ाम, सब कुछ बहुत अच्छा था, जगह भी, दुआ दी, बरकत दी, अच्छा फीडबैक दिया। फिर एक सवाल था जहन में, वो पूछा कि भाई एक क्वेश्चन है अंकल जी, ये बता दें कि इतनी कोशिशों में सिर्फ फीमेल वर्कर्स क्यों नहीं आई? अब आपको मैं सिर्फ अपने मुल्क के अखलाकी जवाल की कहानी सुनाने लगी हूँ। क्यों भाई? कहते हैं कि बेटा आप बात सुनना की है ना, तो अब मैं आपको बताता हूँ। पहली तो उन्होंने वजह बताई कि लड़के वेटर जो होते हैं वो हमें एक खास अमाउंट बताई, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको एक प्रोग्राम का हम इतना देते हैं। सारी बात का खुलासा क्या था कि औरतों को वेटर्स बुलाना महंगा भी था। चले वो, मैंने कहा लोग जहाँ लाखों लगाते हैं वो 1,00,000 और दे देंगे आपको, कह दें मर्द होंगे तो इतने के, औरत होगी तो 4 पैसे लगा लें। और मुझे यकीन है शादियों पर जिस दिल खोल से हम लगाते हैं कोई पूछेगा भी नहीं, नो क्वेश्चन एट ऑल। लेकिन दूसरा मसला इससे संजीदा था। कहते हैं कि अगर हम औरतों को भी करते हैं ना, तो हमारे वेटर्स के आपस में ताल्लुकात शुरू हो जाते हैं, करप्शन शुरू हो जाती है। वाकया तो उन्होंने बताया, थोड़ा सा उनको मौका मिलता है ना तो नाजेबा हरकतें करते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि ये जो वेटर्स होते हैं ये हमारे अपने पक्के किस्म के, आप कह लें कि रेगुलर एम्प्लॉयज हैं। जब हम बाहर से किसी को बुलाते हैं हमें उनका आगा पीछा नहीं पता होता, और हमें उनको टिकट भी बस का दे के बुलाना पड़ता है, और उसमें चोरियां होती हैं। फिर उन्होंने वाकयात सुनाए कि हॉल की लाइटें जब डिम होती हैं अंधेरा कर करा के, तो उसमें भी वो सुना रहे हैं, पिछले ही वीक में शायद किसी का पर्स चोरी करके कोई चला गया और उसमें 3,00,000 रुपया था, तो वो हमारे पास। यानी वो उनके गम सुन के मुझे उनकी बात कुछ सही ही लग रही थी। मैं उस वक्त से ये सोच रही थी हम इतने गिर गए। देखिए एक बात मारूफ है न्यूयॉर्क शहर के लिए, बहुत साल पहले की बात है, चंद मिनट के लिए बिजली गई थी तो उनके सारे ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बंद हो गए थे। जब सिस्टम बंद हो गए तो वो चोरों को पता था कि हम डिडक्ट नहीं किए जाएंगे, तो उस 10-15 मिनट में बेशुमार चोरियां हुई, लोग शीशे तोड़ तोड़ के अंदर से सामान ले गए। तो वो तो ईमान की कमी है। आप मैं जिस मुल्क में बैठे हैं, जहां हम बैठे हैं, यकीन करें कि यह चीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए काफ़ी नहीं है कि यहाँ चोरियों से लोगों को बचाने की ज़रूरत है। सिर्फ मैं और आप इसी पे बात कर लें कि चोरी कितनी बुरी बात है। लोग घरों में अपनी मासियों से डर रहे होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज्यादा एहतियात अपनी चीजों की दुनिया के किसी मुल्क में जाके मुझे करनी पड़े जितनी मुझे यहां आके फील कराई जाती है। पर्स ठीक रखना, बैग बंद रखना, उसको ना करना, उधर ना जाना, रिक्शा नहीं लेना, टैक्सी में नहीं बैठना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। क्यों भाई? हम मुसलमान हैं, इतना प्यारा मुल्क है हमारे पास। अल्लाह ने मुझे आपको कितनी बड़ी नेमत दी है, ये क्या हमने इसका हक अदा किया? गंदगी देख लें, करप्शन देख लें, खराबी देख लें, बेहयाई का तो अब हद ही खत्म होती हुई दिख रही है, तो क्या मुझे आपको अपना दिया नहीं चलाना? क्या हम हर वक्त यही सोचते रहेंगे कि कोई उमर बिन खत्ताब आए, और उमर बिन खत्ताब को कोई आने ही नहीं देगा, सीधी सी बात है, अच्छे हुक्मरान को आने कौन देगा? पहले लोगों का तज़किया, तरबियत। और याद रखिए बड़ी बड़ी जगहों तक पहुंचना मुमकिन नहीं होता। आपका मेरा, यानी आप मुझसे अगर चंद जुमलों में पूछें कि हमारे मुल्क का हालात कैसे समझ सकते हैं, तो मैं कहूंगी जिस दिन आप अपने हिस्से का काम करेंगी, आपके घर में आने वाली मासियां, आप उनके दीन अखलाक नमाज इबादत की कोशिश करें, आपके ड्राइवर्स, आपके माली बाबा, आपके मर्द उनकी कोशिश करें, आप खुद अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। आपके मर्द फैक्ट्रीज में काम करते हैं ना, या आपकी अपनी फैक्ट्रीज है माशाल्लाह। मैं कहती हूँ कभी सोचिए, आप जो जुमले कहूँगी ना ये लिखने के काबिल है अगर आप इस पे अमल करना चाहते हैं। आज जाकर अपने घर में सब सर जोड़ के बैठे, अपने शौहर को बिठाएं, बच्चों को, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, कहें एक बहुत बड़ा मसला हल करना है। और मसला हल ये करना है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनकी इस्लाह की कोशिश। अल्लाह के नबी कह कर गए कुल्लुकुम राइयुन, तुम में से हर एक चरवाहा है, जिम्मेदार है, और हर एक से उसके बारे में पूछा जाएगा। और औरत अपने घर में जिम्मेदार है, मर्द अपने बच्चों पे घर पे, यानी सीधी सी बात है, मैं अपने ऊपर लेती हूँ, मुझसे कल किस किस के बारे में पूछा जाएगा? सबसे पहले तो मेरे बारे में पूछा जाएगा। कु अनफुसकुम, तुमने अपने आप को आग से बचाया? फिर दूसरा मुझसे सवाल होगा वाहलीकुम, अपने घर वालों को बचाया? मुझसे मेरे बच्चों के बारे में पूछा जाएगा, मुझसे मेरे शौहर के बारे में भी पूछा जाएगा। ठीक है, उसमें ज़रा नरमी होगी, लेकिन पूछा ज़रूर जाएगा कि मियाँ साहब को फजर पे क्यों नहीं उठाती थी आप, और क्यों मजबूर करती थी उनको कि जहाँ से मिलता लाओ मुझे चाहिए जोड़ा, और जो मर्जी है बेटी की शादी करनी है कर्जे लो दो, गन पॉइंट पे अपने मर्दों से पैसे निकलवाती थी कि ये रस्म निभानी है, ये कपड़े देने हैं, ये जूते लाने हैं, ये जेवर लाना है, ये तुम थी। मुझसे पूछा जाएगा, फिर मुझसे क्या पूछा जाएगा? मेरे इर्द गिर्द जो हमारे साथ लोग होते हैं, ला यदुर को मंदल इजाह दई तुम, सूरत मायदा में अल्लाह तला कहते हैं तुम्हें नुकसान ही नहीं कोई दे सकता, चाहे कोई कितने से कितना बिगड़ा हुआ हो, शर्त यह कि तुम हिदायत पे हो। जितना आपका दायरेकार बड़ा है ना, अगर आपके घर में सिर्फ एक मासी आती है ना तो आपकी जवाबदेही कम है, और अगर आपके घर में माशाल्लाह 8-10 मासी हैं, कोई रोटी वाली, कोई कपड़े वाली, कोई इस्त्री वाली, ये अल्लाह की नेमतें, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप उनके हक पूरे कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो इट्स फाइन। बट उनका ये भी तो हक है, नमाज का वक्त है, अगर आपने पढ़नी है तो उन्होंने भी पढ़नी है। आप तो उतर के गाड़ी से नमाज पढ़ लेंगी, अपने ड्राइवर को आप दूसरी जगह भेज रही हैं, वो नमाज कहाँ पढ़ेगा? अगर मैं और आप अपने इर्द गिर्द वाले थोड़े थोड़े लोगों में वो काम करें जो नबी सल्लम ने मदीना आकर किया था, एक महाजर को एक अंसार के साथ जोड़ दिया था, और साथ क्या कह दिया कि तुम उसकी जिम्मेदारी ले लो, तुम उसकी ले लो, सभी कुछ था। आज बिल्कुल वही अख़वात मदीना, उस दिन तो चले माली परेशानियों के लिए थी ना, आज दीनी कमजोरियां और मजहबी रुझान कम है जो ना, उसका इलाज क्या है कि हम हर एक 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 दो दो की जिम्मेदारी ले लें, मैं इसकी ले लूं, आप उसकी ले लें, आप पूरी गली के लोग मिलकर बात करें, एक घंटा अगर अपनी सारों की मेट्स को उधर बिठा कर दें, आप सबको दर्स नहीं देना आता, किसी एक को आता है आपकी गली में, आपकी तजवीद इतनी अच्छी नहीं है, आपकी गली में किसी एक की अच्छी है, सारी 8-10 दोस्तें बैठे बात करें, इस जगह इस वक्त तजवीद हो रही है, तुम भी अपनी मेट को भेज देना, मैं भी भेज दूँ। मेट तो समझते हैं ना मासी लड़कियाँ, क्या इनका हक नहीं है? हम इन अपने काम के लालच में हम इनको नमाजों से भी बाज़ दफ़ा लेट कर देते हैं, और इसके बाद आगे से आगे दायरा कार बढ़े।